प्रीतमस्तु माभिर्द्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।
भगवान ने हमको बताया कि हम सबको कर्म योग करना चाहिए और तृतीय अध्याय का प्राण श्लोक है 30वां श्लोक जिसमें कर्म योग की विधि बताई गई है। फिर भगवान कहते हैं अगर कर्म योग करोगे तो क्या मिलेगा। भगवान कहते हैं ये मे मतम इदम नित्यम अनुष्ठिष्ठन्ति मानवा। जो भी मनुष्य हमने जैसा कहा है वैसा अगर कोई करे किस हिसाब से श्रद्धावंत है। श्रद्धा होनी चाहिए, इसमें विश्वास होना चाहिए इस मार्ग के अंदर। अनसूयंत अनसूयंत उसमें कोई दोष नहीं निकाले। अगर आप दोष निकालोगे तो आप फिर जो है उस मार्ग पर नहीं चलोगे। मुच्यंत ते भी कर्मी भी बोले उससे क्या होगा, बोले आपके सारे पाप पुण्य कर्म खत्म हो जाएंगे। कर्मयोग करोगे तो पाप पुण्य खत्म हो जाएंगे। कैसे खत्म हो जाएंगे, कर्मयोग करते करते आपका मन शुद्ध हो जाएगा। मन शुद्ध जहां हुआ ज्ञान मिला, ज्ञान मिलने से ही पिछले सारे पाप पुण्य खत्म हो जाते हैं। तो ये एंड रिजल्ट है, स्टार्टिंग पॉइंट कर्मयोग है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो सुनते नहीं है, ये तो अभ्यसूयंत नानु तिष्ठन्ति में मतन, जो नहीं करते हैं। जो करते हैं उनको ये फल मिलेगा, जो नहीं करते हैं वो क्या, सर्व ज्ञान विमुड़ास्तान विद्धि नष्टान चेतस, उनका जीवन नष्ट हो गया, उनका मन शुद्ध नहीं होगा, उनको ज्ञान नहीं मिलेगा, उनके पास में जो ज्ञान है वो भी बेकार हो गया। तो क्यों नहीं ये करते हैं लोग, अब प्रश्न उठता है कि लोग क्यों नहीं करते हैं। तो कहते हैं प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। सब अपनी प्रकृति के हिसाब काम कर रहे हैं, आपकी अपनी प्रकृति अपने स्वभाव के अनुसार सब करते जा रहे हैं। तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि प्रकृति जो है बलवान है। भगवान के ज्ञान से भी क्या प्रकृति बलवान है,
नहीं।
ऐसा तो होना नहीं चाहिए, मगर लोग प्रकृति के कारण करते जा रहे हैं। वो मानता है, जो आदमी गलती करता है वो मानता है कि मेरे में गलत काम कर रहा हूं, स्वभाव के अनुसार कर रहा हूं। हमको शास्त्र के अनुसार करना चाहिए, भगवान जैसा कहते हैं वैसा करना चाहिए, मगर हम कैसे कर रहे हैं, वासना के अनुसार कर रहे हैं। अब वासना वर्ड आप लोग को मालूम होना चाहिए BMI चार्ट में कहां पर है। हम सब जो है प्रकृति मियांति वासना के अनुसार कर रहे हैं, और होना क्या चाहिए, शास्त्र के अनुसार होना चाहिए। तो ज्ञान मिलने के बाद भी क्यों नहीं हो रहा है। तो कहते हैं कि ज्ञान मिलने के बाद में इसलिए नहीं हो रहा है कि आपके प्रकृति के अंदर और ज्ञान के अंदर गैप है। प्रकृति आपसे गलत काम कर रही है और ज्ञान आपको कहता है उल्टा ऐसा नहीं करो, मगर फिर भी जो आप प्रकृति के हिसाब से कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, ज्ञान बैठा नहीं है। क्या उदाहरण दिया था आपको हमने, हाँ, आए चाय का कप है, चाय का कप आपकी प्रकृति है, वो पीने में कड़वी है, ज्ञान मिठास है, आपने उसमें चीनी डाली, ज्ञान उसमें बैठ गया गया, मगर आपने घोला नहीं, उसको एसिमिलेट नहीं किया। तो ज्ञान अगर जब आप एसिमिलेट कर लेंगे, नहीं जब तक करते हैं तब तक गैप है, दोनों मिले नहीं। चाय और शुगर जब तक नहीं मिलेगी तब तक शुगर मीठी, चाय मीठी नहीं होगी। उसी तरह से ज्ञान और प्रकृति जब एक साथ मिलेंगे नहीं तब तक उसका रंग नहीं आएगा, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। कहते हैं इसके कारण जो है वो हो नहीं रहा है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि देखो आपकी प्रकृति एक है और आपको कहा जाए इसके हिसाब से चलो, ज्ञान के हिसाब से चलो, बड़ा कठिन है, पहाड़ चढ़ने के बराबर है या समुद्र पार करने की तरह है। आपका स्वभाव दूसरा है और हम आपको कहते हैं ऐसा नहीं, ऐसे करो, उल्टा करो। तो ज्ञान क्या असक्रिय है, कोई काम नहीं करता है? बोले नहीं करता है, करता है, ज्ञान बलवान है, काम करेगा, धीरे धीरे करेगा। आप उसके ऊपर मनन करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, वो जरूर करेगा। फिर लोग क्यों ऐसा नकारात्मक काम करते हैं, शास्त्र को नहीं मानते हैं, प्रकृति के हिसाब से करते जा रहे हैं? कहते हैं कि राग और द्वेष के कारण। आपको याद होगा कि हम लोग के BMI चार्ट में जो वासना है उसके और क्या क्या पर्यायवाची शब्द हैं? उसका पर्यायवाची शब्द है राग, द्वेष, लाइक, डिसलाइक्स, प्रकृति, माया, योग माया, विद्या, त्रिगुण, ये सब उसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो वासना का मतलब क्या? लाइक्स एंड डिसलाइक्स, राग एंड द्वेष। तो ये राग द्वेष आपको जो है जोर करके वो करवाते हैं। शास्त्र कुछ कहता है मगर आपकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स वो आपको जोर करवाती है। तो राग द्वेष क्या है? तो पतंजलि कहते हैं राग और द्वेष दोनों ही क्लेश हैं, दोनों ही क्लेश हैं। तो पतंजलि जो है उसका राग का एक डिफिनीशन देते हैं, क्लेश का डिफिनीशन देते हैं। राग किसको कहते हैं? सुखानुसाई राग, सुख अनुसाई, सुख के पीछे दौड़ रहे हैं वो राग है। आपका अटैचमेंट कहां होता है? जहां जहां जिस वस्तु से, जिस प्राणी से, जिस व्यक्ति से आपको सुख मिला, आप वहां जुड़ जाते हो। सुख अनुसाई, सुख के पीछे दौड़ रहे हैं, राग है। और द्वेष क्या है? दुख अनुसाई द्वेष, जो चीज आपको दुख दे रही है वहां से आप पीछे हटते जाते रहे। तो पतंजलि के हिसाब से दोनों ही क्लेश हैं, राग भी क्लेश है, लाइक्स भी क्लेश है, डिसलाइक्स भी क्लेश है, दोनों ही है, राग द्वेष दोनों ही क्लेश देते हैं। अच्छा, राग द्वेष आपके जो है सिंपल भी हो सकते हैं, कठिन भी हो सकते हैं। जो सिंपल राग द्वेष है वो आपको परेशान इतना नहीं करते हैं, उनको आप जीत सकते हो। मगर जो कठिन राग द्वेष है, जिसको स्ट्रांग राग द्वेष कहते हैं, वो आपको अशास्त्रीय काम करवा देंगे, गलत काम आपसे जोर से करवा देंगे। तुलसीदास जी कहते हैं मैं काम क्रोध का नौकर हूं, है ना, हम लोग काम के नौकर हैं। क्यों? राग, इसलिए हम उसके नौकर हैं। स्ट्रांग होगा ना तो हमसे काम करवा देगा। तो ये क्या करते हैं राग द्वेष? राग द्वेष आपको कल्याण मार्ग से अलग रास्ते पर ले जाते हैं। कल्याण मार्ग कौन सा है? जो शास्त्र आपको कहता है, भगवान जो कहते हैं, गीता जो कहती है कि कर्म योग करो। मगर राग द्वेष क्या होगा करके? चलो इधर चलो, यहां ज्यादा सुख है, तुरंत मिलता है लाभ। तो वो आपको कल्याण मार्ग से आपको हटा देते हैं। और ये है कैसे है? बोले ये चोर हैं, चोर हैं ये लोग, ये छिपे रहते हैं, छिप के आपके ऊपर हमला करते हैं। एक बार 18 लोग जो है धन कमा के अब एक जगह से अपने गांव जा रहे थे, तो दो चोर आए। दो चोर आके उन लोग को, 18 आदमियों को जो है उन्होंने सब उनका धन ले लिया। लेने के बाद में उनके ही सिर पर रखवाया, और रखवा के बोलते चलो चलो उठाओ गठरी, उठाओ गठरी उसके सिर पर। ये दो चोर कौन? राग द्वेष। और ये 18 व्यक्ति क्या है? वो दुनिया भर के कामना आमना कंप्लीट करके अपना धन लेके जा रहे हैं। मगर राग द्वेष इतने बलवान है कि 18 आदमियों को बोला उठाओ धन, हम जहां बोलते हैं लेके चलो, चल पड़ा वो। तो ये राग द्वेष हमको ऐसे काम करवाते हैं। तयो न वसम आगच्छेत, उनके बस में कभी मत आओ। अब आए तो क्या करें फिर? देखो राग द्वेष सबकी वासना के हिसाब से उठेंगे, आपके मन तक आएंगे। आपका पुरुषार्थ कहां पर है? उठने के बाद में उसको वहां रोको। आप उठना नहीं रोक सकते। आप समझ रहे हो, वासना के अनुसार आपके भीतर में कामनाएं आएंगी, उसको आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वासना आपकी लाइक्स एंड डिसलाइक पिछले जन्म से चले आ रहे हैं, उनका उठना नहीं रोक सकते, मगर उठने के बाद में आपका पुरुषार्थ कहां पर है उनको रोक सकते हैं। देखो समझ में आया आपको, वासना के अनुसार कामना या राग द्वेष को उठना वो स्वाभाविक है, उसको आप नहीं रोक सकते। क्यों नहीं रोक सकते, पिछले जन्म से चला आ रहा है वो। मगर उठने के बाद में पुरुषार्थ क्या है अब हम चेक कर सकते हैं उसको। कामना आई एक तो हम उसको कह सकते हैं रुको, अच्छी कामना हो तो जल्दी कर दो। कौन सी अच्छी कामना है, हमने आपको कई बार कहा है जो भी कामना भगवान की तरफ ले जाए वो अच्छी कामना है, जो भी कामना भगवान के विपरीत ले जाए, भगवान से विपरीत कौन सी होती है, संसार की कामना। जो कामना आपको संसार की तरफ ले जाए वो कामना गलत है, और जो कामना भगवान की तरफ ले जाए वो सही कामना है। तो अगर गलत कामना आई उठ गई है क्या करें, आपका पुरुषार्थ है उस टाइम में चुप करो, थोड़ा सा आप पुरुषार्थ करो, उसको रोको, वहां चेक कर दो उसको। वहां अगर आपने संयम कर लिया, उसको नियंत्रण कर लिया, एक मिनट दो मिनट तीन मिनट अगर रोक लिया आप बच जाएंगे, आप बच जाओगे। आपके कामना आई, कामना आने के बाद में आपकी कामना के हिसाब से बच्चा नहीं पढ़ रहा है, आप चाहते हो कि घर में हम आए जब ऑफिस से बच्चा टेबल पर किताब लेके बैठा पढ़ता हो, आप आए बार पढ़ नहीं रहा है, नहीं पढ़ रहा तो क्या हुआ, आपको गुस्सा आया, गुस्सा आने के बाद में आपने भारतवर्ष में जैसे हाथ उठा दिया, यहां तो हाथ नहीं उठा सकते। अगर आपका हाथ उठाने के लिए अगर मन में आया भी, आप रोको अपने आप को, रुक जाओ भाई दो मिनट रुको, दो मिनट के अंदर वो आपका, ये जो रोकना है ना वही असली चीज, वहीं पर रुकना है। रोक दिया हो गया, मगर आपने अगर कर दिया काम फिर नहीं कुछ हो सकता, फिर तो फल लेना होगा, फिर तो बच्चा 911 को बुलाएगा फिर तो फल आपको लेना होगा, उसके पहले रोक लो ठीक है। तो सर्वकर्म राग द्वेष के हिसाब से हमारे जितने भी कर्म है ना, आप ख्याल करके देखना, सब के सब कर्म राग द्वेष से प्रेरित हैं। प्रेरित है मतलब राग द्वेष पीछे है। तो राग द्वेष मनुष्य को अपनी प्रकृति के अनुसार नियुक्त करती है, राग द्वेष के हिसाब से ही हम काम करते हैं, एवं स्वधर्म का त्याग कर परधर्म का अनुष्ठान हो जाता है। हमारा जो धर्म है, हमारा जो कर्तव्य कर्म है, उसको नहीं करके हम दूसरा कुछ कर बैठते हैं। जैसे डॉक्टर ने आपको, आप गए आपका पेट खराब है, डॉक्टर ने कहा कि आपको जो है थोड़ा खाना हल्का खाना होगा, आगे के लोग कविराज कहते थे एक दिन नहीं खाना या दो दिन नहीं खाना, फिर एक सूखी रोटी और मूंगी की दाल, उसके अंदर कुछ नहीं होना चाहिए, वो खाना उसके बाद ही। अब घर आके आप कहो कि डॉक्टर क्या है मेरे को भूख लगी है मैं तो खाऊंगा, तो ये नहीं होगा। तो राग द्वेष को अगर रोकना है तो उसकी प्रतिपक्ष भावना, उसकी उल्टी भावना हो आनी चाहिए, या राइट थिंकिंग होनी चाहिए। राग द्वेष के हिसाब से जब आपके अंदर कामना आती है, अगर कोई गलत कामना है तो उसकी उल्टी कामना करनी होगी, प्रतिपक्ष भावना करना होगा, अथवा राइट थिंकिंग करो, ये कामना जो आई है इसको हमको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो हमने अभी तक ये देखा, हम अब सभी प्रकृति के वश वासना के अनुसार हम चलते हैं। भगवान कहते हैं कि आपको शास्त्र के अनुसार चलना है, हम जैसा कहते हैं वैसा करो। प्रकृति और भगवान के अंदर किसको चुनना चाहिए, भगवान को, मगर हम चुनते नहीं हैं। मन में आया कर दिया, किसी ने कर दिया, उसे पूछे क्यों किया, मेरा मन कहता था मैंने कर दिया, बाद में जाके पछताता है क्यों हमने किया, मगर लोग कर देते हैं। विवेक चूड़ामणि के अंदर भी हम लोग देख रहे थे, मनो नाम व्याघ्र, मन क्या है, बोले एक ये व्याघ्र एक टाइगर है, बाघ है, किसमें है? बोले सेंस ऑब्जेक्ट के जो जंगल होते हैं ना, उसके अंदर ये माइंड एक बाघ की तरह है। तो ये क्या करता है, वो सेंस ऑब्जेक्ट में जाके फंस जाता है। तो हमको जो है अपने आप को नियंत्रित करना है। अब प्रश्न उठता है कैसे राग देश को वश में करें, राग देश को वश में कैसे करें? तो भगवान कहते हैं इसको करने के लिए 35वां नंबर श्लोक आप देखो।
श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः,
श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः,
परधर्मात् स्वनुष्ठितात्,
परधर्मात् स्वनुष्ठितात्,
स्वधर्मे निधनं श्रेयः,
स्वधर्मे निधनं श्रेयः,
परधर्मो भयावहः,
परधर्मो भयावहः,
श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः, परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, स्वधर्मे निधनं श्रेयः, परधर्मो भयावहः।
श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। भगवान कहते हैं अगर राग द्वेष को हटाना है तो हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमारा राग द्वेष को हटाना है, तो क्या करना होगा? बोला अपना स्वधर्म करो। तो मेरा स्वधर्म क्या है, पहले तो ये जानना है हमारा स्वधर्म क्या है। तो कहाँ जाएं स्वधर्म जानने के लिए? स्वधर्म जानने के लिए आपको आपके वर्ण, आपके आश्रम और आपकी समाज में जो स्टैंडिंग है, आपकी जो पोस्टिंग है, उसके हिसाब से जो आपके कर्तव्य कर्म बनते हैं वो करना है। आपके वर्ण, वर्ण मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र किसके ऊपर निर्भर करता है? सत्व रजस तमस के ऊपर निर्भर करता है। ब्राह्मण कुल में पैदा होने वाला व्यक्ति केवल ब्राह्मण नहीं होता, जरूर उसके पास में कुछ क्वालिटीज आगे जन्म की हैं जिसके कारण ब्राह्मण कुल में उसका जन्म हुआ है। मगर भगवान यहां पर कहते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कौन है, तो सत्व रजस तमस के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। तो पहला तो अपना क्वालिटी देखो, हमारे में कौन से गुण हैं, ब्राह्मण के हैं कि क्षत्रिय के हैं, वैश्य के हैं कि शूद्र के हैं। अपना आश्रम देखो, आश्रम क्या है, कि हम ब्रह्मचर्य में हैं कि हम गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास। और आप अपना समाज के अंदर पोस्टिंग देखो, हम क्या काम करते हैं, हमारी क्वालिफिकेशन के हिसाब से कंपनी ने जो हमको पोस्ट दिया है उसके हिसाब से उन्होंने दायित्व बता दिए हैं, तो वो अपने दायित्व करो। तो हमारे अपने को स्वधर्म करना है। अपने स्वधर्म करने के लिए भगवान ने अर्जुन को कई जगह उसको इंगित किया है कि तुम्हारा धर्म क्या है। पहले कहते हैं नियतम कुरु कर्मत्वम, तुम अपना कर्म करो। नियत कर्म क्या होता है? नित्यान्यमेतिक उपासना प्रायश्चित। तो ये कर्म हमको करने हैं। फिर भगवान ने कहते हैं योगस्थ कुरु कर्मानी, कर्म कैसे करने चाहिए? योगस्थ, योग के अंदर करने चाहिए, योग कर्म योग के अंदर भगवान को साथ जोड़ के करना चाहिए। उसके बाद में सिद्ध सिद्धयो समभूत्वा, जब आप कर्म करते हो तो उसके अंदर आपको लाभ और नुकसान का उस टाइम में आपको चिंतन नहीं करना है। कर्म कैसे करें, तो आपने 30वें श्लोक में देखा था मैं सर्वाणी कर्माणी सन्यस्य अध्यात्मचेसा निर्ममो निरहंकार निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगतज्वर। ऐसा भगवान ने कह दिया आपको कर्मयोग कैसे करना है। उसके बाद में भगवान ने यह भी कहा था यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको एवं कर्म बंधना, अगर आपने यज्ञ रूपी कर्म नहीं किया तो आपको बांधता है। याद है ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको जानना है कि हमारा जो है स्वधर्म क्या है। सबसे पहले हमको जानना है मेरा स्वधर्म क्या है, पहले अपने स्वधर्म का निश्चय करो। तो स्वधर्म का निश्चय कैसे होगा? वर्ण आश्रम हमारी पोस्ट के हिसाब से वो होगा। देखो आप अगर एक प्रोजेक्ट भी करते हो ना, तो उसके अंदर डिफरेंट ग्रुप के अंदर डिफरेंट लोग होते हैं, तो हर व्यक्ति को उसको स्पेसिफाई कर दिया जाता है, आपका ये काम है, आपको ये पार्ट देखना है, आपको ये पार्ट देखना है, आपको ये पार्ट देखना है, सबका स्पेसिफिकेशन कर दिया जाता है। तो मेरा क्या काम है कहाँ बताया गया है? शास्त्र में बता दिया गया है कि आपको क्या करना है। तो पॉइंट नंबर वन, आपको अपना स्वधर्म जानना है, स्वधर्म जान के उसको करना है। दूसरा पॉइंट है, अगर आपका स्वधर्म विगुण भी हो, मेरिटलेस हो, ग्लैमरलेस हो, फिर भी करना है। स्वधर्म विगुण। एक व्यक्ति एक सफाई वाला था, रास्ते में झाड़ू देता था, सफाई करता था, तो उसने एक दिन देखा कि प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, उसके आगे पीछे 20 गाड़ियां लोग हैं, सब कमांडो बैठे हुए हैं और प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, तो सोचा मेरे को भी एक ऐसा काम मिल जाए। देखो स्वधर्म उसका क्या है, झाड़ू लगाना, और सोच के आ रहा है परधर्म कि मैं भी वो प्राइम मिनिस्टर के उसके अंदर में एक मैं भी व्यक्ति बन जाऊं। तो उसको कमांडो बनने के लिए कितनी ट्रेनिंग लेनी होगी, कितना सिक्योरिटी किस संबंध में उसको जानना होगा। तो अगर ऐसा सोचे तो फिर तो गड़बड़ होगा। पर धर्म स्वनुश्रिता, लोग दूसरे को धर्म को बहुत ठीक ठीक करना चाहते हैं। बराबर कहते हैं ना, ग्रास ऑन द अदर साइड इज वेरी ग्रीन। हम लोग को लगता है कि दूसरों के घर की वो घास जो है ना बड़ी ज्यादा ग्रीन है, अपना जो है लाल लाल दिखाई पड़ता है, सूखा लगता है, वो लगता है उधर वाला जो है अच्छा है। एक व्यक्ति जो है किचन के अंदर काम करता है, वहां डिश वॉशिंग करता है, मगर वो देखा कि भाई श्राइन के अंदर एक जो है वहां पर स्टेज है, और स्टेज को मैनेज करने वाले लोग जो है वो हाई चेयर पर बैठे रहते हैं, कभी इधर घुमा दिया कभी इधर घुमा, ये काम अच्छा है।
शंकर जी
डिश वॉशिंग, ईच एंड एवरी प्लेट हैज टू बी क्लीन। अब वो देखो वहां सोचता है कि हमको ये हो जाए तो अच्छा है। तो पर धर्म करोगे तो क्या होगा? तो यहां पर सर भगवान कहते हैं पर धर्मो भयावह, बोलो उसका रिजल्ट बहुत खराब होगा, आप चिंतन नहीं कर सकते हो कितना खराब होगा। तो संत ज्ञानेश्वर ज्ञानेश्वरी के अंदर कई एग्जाम्पल देते हैं। आपने संत ज्ञानेश्वर का नाम सुना है? ज्ञानेश्वरी, उनकी गीता के ऊपर एक टिप्पणी लिखी है उन्होंने, वहां पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। उसमें लिखा है कि आपका घर छोटा है, दूसरे का महल है, और आप सपना देखना शुरू करती है महल का। आप सोचो क्या होगा, आपने बड़ी मुश्किल से एक महल का इंतजाम कर लिया। इंतजाम कर लिया मतलब बैंक वाले से कहा, उसने मॉर्गेज दे दिया, आपने कुछ हिसाब किताब इधर उधर बैठा लिया। इंडिया में होता है ऐसा, इसीलिए लोग 13,000 करोड़ लेके भी चले जाते हैं, पता ही नहीं लगता है क्या हो गया। तो बैठा लिया आपने हिसाब, अब जब उसकी पेमेंट की सवाल आई, यहां पर तो बड़ा मुश्किल है, आपने अगर बड़ा घर ले लिया पेमेंट करनी है, आपकी सैलरी अगर उतनी नहीं है, अब इंस्टॉलमेंट देना है, अब भयावह पोजीशन आएगा कि नहीं आएगा, कहां से लाओगे? तो अपना स्वधर्म देखो, महल का ख्वाब देखना। दूसरा एग्जाम्पल, ये ज्ञानेश्वरी का एग्जाम्पल है, मेरा नहीं है। हस्बैंड को दूसरे की वाइफ ज्यादा पसंद आती है, पर स्त्री अच्छी लगती है, और स्त्री को पर पुरुष अच्छा लगता है। इसलिए पहले मैंने कह दिया था मेरे एग्जाम्पल नहीं है। अच्छा दोनों सिचुएशन भयावह है कि नहीं, रिजल्ट क्या होगा सोचो, क्या रिजल्ट होगा? छिप छिप के जितना कर लिए कर लिए, जिस दिन पता लग गया उस दिन। देखो पुलिस की ड्यूटी है, अगर कहीं चोरी हुई है तो पुलिस की ड्यूटी क्या है? पुलिस की ड्यूटी है कि भाई वो चोर को पकड़ के ले आए और उसको कोर्ट के अंदर हाजिर करें। अब आप अगर चोर को पकड़ लो और उसको दंड देना शुरू कर दो, पीटना शुरू कर दो, ये आपका अधिकार नहीं है। आपका अधिकार कहां तक है? आपने पकड़ लिया, पुलिस को दे दो। पुलिस का अधिकार क्या है? उसको पकड़ के कोर्ट तक ले जाना उसका अधिकार। पुलिस भी नहीं पीट सकती है, अगर वो पीटेगी तो क्या करेगी? पर धर्म हो जाएगा। रिजल्ट क्या होगा? भयावह, नौकरी चली जाएगी। ऑफिस में एक कोई पियोन काम करता है, उसका काम क्या है? लेटर लेना, रसीद दे देना। अच्छा, वही अगर सोचे कि मैं ही इसका जवाब दे देता हूं, जो चिट्ठी है ये जवाब दे देता हूं, या किसी क्लर्क का काम है पेमेंट का चेक बना देना, बना के ऑफिसर के पास ले जाएगा, ऑफिसर सही करेगा। अब क्लर्क सोचे मैं ही सही कर देता हूं। सब पर धर्म है। उसका स्वधर्म क्या है पियोन का? कि आप चिट्ठी का वो जवाब नहीं दो, चिट्ठी ले जाके ऑफिसर को दो, मगर वो जवाब देने को तैयार है, पर धर्म। क्लर्क का काम है चेक लिखना, चेक लिख के ऑफिसर के पास ले जाओ, मगर वो पर धर्म करने को तैयार है, मैं ही सही कर देता हूं। गुरुजी हम लोग के जब एक बैच में गुरुजी ने आचार्य हुए थे, रेसिडेंट आचार्य, बच्चों को पढ़ाया, तो एक दिन हलवा बना के खिलाया। हलवा बड़ा अच्छा था। अब लोग अगर गुरुजी को ये कहें कि आप एक रेस्टोरेंट खोल लो अब, तो पर धर्म हो जाएगा वो। स्वधर्म एंड पर धर्म। डॉक्टर का काम क्या है? मरीज देखना। अच्छा, वो मरीज देखने के बदले अब वो संगीत ने वहां बैठ के अगर आलाप करना शुरू कर दे चैंबर में। सब पर धर्म है। आर्मी का सोल्जियर कोई हो और वो बोले कि नहीं मैं अब ड्यूटी में नहीं जाऊंगा, पर धर्म, घर में रहूंगा। स्वधर्म तुम्हारा क्या है कि जाओ ड्यूटी करो, मगर नहीं। तो यहां पर शंकराचार्य जी लिखते हैं, अच्छी प्रकार अनुष्ठान किए गए अर्थात अंग प्रत्यंगों सहित संपादन किए गए भी पर धर्म की अपेक्षा गुण रहित भी अनुष्ठान किया हुआ अपना धर्म कल्याणकर होता है, अर्थात अधिक प्रशंसनीय है। तो भगवान कहते हैं अपना स्वधर्म करो, पर धर्म नहीं करो। अच्छा, हम अपने BMI चार्ट में कैसा समझें उसको? हमको अपनी वासना के अनुसार अपना काम करना है। अगर हम अपनी वासना के अनुसार काम नहीं करते हैं तो क्या होता है? तो हमारी वासना भी क्षय नहीं होगी और दूसरों की वासना इकट्ठी हो जाएगी। हमने एक व्यक्ति को ऐसा देखा है उसके जीवन में, उसका सारा जीवन हमने देखा है, जान पहचान का एक व्यक्ति था, बहुत ही अच्छे परिवार का था, जमींदार फैमिली का था,
अभी भी है,
अभी भी शायद बचा हुआ होगा,
बचा हुआ।
तो ये बात है 1950s की बात कर रहे हैं, आज से करीबन 70 साल पहले की बात है। तो उस टाइम में वो डॉक्टरी पढ़ना चाहता था और उसके माता पिता कहते कि नहीं तुम इंजीनियर बनो, और इंजीनियर बनाने के लिए उसको लंदन भेज दिया। हम 50 की बात कर रहे हैं, देखो कितना उनका परिवार था, वो ऐसा संभ्रांत परिवार था। अब वो बेचारा पढ़ के आया, पढ़ के आके सारा जीवन वो उसने इंजीनियर के हिसाब से नौकरी की, करने के बाद में रिटायर भी कर गया वो, मगर सारा जीवन मेडिकल जर्नल पढ़ता रहा। देखो अब हुआ क्या, अपनी वासना के अनुसार उसका सहधर्म जो है उसके अनुसार वो काम नहीं कर पाया, उसकी वो वासना खत्म नहीं हुई और इंजीनियरिंग की और वासना जुड़ गई। अब उसका जीवन भलो भयावह हुआ कि नहीं हुआ? अपना धर्म नहीं करके पर धर्म अगर हम कर लें, मगर वो तो बच्चा था उस टाइम में, माता पिता ने जैसा किया कर दिया उसने। अब हमारे समाज में हम लोग देखते हैं कि लोग अज्ञानी नहीं है, सब अपना अपना स्वधर्म जानते हैं, सब स्वधर्म जानते हैं, हाउस होल्डर, ऑफिसर, सब अपनी अपनी ड्यूटी जानते हैं, मगर क्यों परधर्म कर बैठते हैं, क्या कारण है इसके बारे में, तो इसके बारे में जानने के लिए हमको थोड़ा सा और विचार करना होगा। तो यहां पर कहते हैं कि व्यवहार के अंदर हमने जो देखा, व्यवहार के अंदर जो है अपना स्वधर्म करना चाहिए। स्वधर्म करने के लिए सबसे पहले क्या करना है आपको, आपका स्वधर्म क्या है वो पहले जानना है। कहां से पता लगेगा? आपके वर्ण आश्रम और आपकी पोस्टिंग से है। उसके बाद फिर ये सेकंड पॉइंट उसके अंदर ये बताया गया कि आपका स्वधर्म अगर विगुण भी हो, ग्लैमरलेस, मेरिटलेस, फिर भी अपना स्वधर्म करो, पर धर्म मत करो। मगर हम कई बार क्या करते हैं, राग द्वेष जो है ना हमको विचलित कर देते हैं, स्वधर्म से विचलित कर देते हैं। अच्छा, आध्यात्मिक दृष्टि, एक तो ये व्यवहारिक दृष्टि हुई, आध्यात्मिक दृष्टि से एक इसका मतलब क्या हुआ, अपना स्वधर्म। स्व मीन्स अपना, धर्म मीन्स नेचर, मेरा नेचर क्या है, हमारा नेचर सच्चिदानंद है। तो हमको अपने सत्यम ज्ञानम अनंत उसका हमको चिंतन करना चाहिए। मगर हम क्या करते हैं, उसको छोड़कर परधर्म करते हैं। स्वधर्म क्या है, सच्चिदानंद। परधर्म क्या है, हम बॉडी माइंड इंटेलेक्ट से आइडेंटिफाइड हैं, परधर्म नहीं कर रहे हैं, स्वधर्म नहीं कर रहे हैं, परधर्म कर रहे हैं। आया समझ में? मेरा स्वधर्म क्या है, मेरा नेचर क्या है, मेरा नेचर है आत्मन सच्चिदानंद। हम कर क्या रहे हैं, सच्चिदानंद का चिंतन कर रहे हैं? नहीं। किसका चिंतन कर रहे हैं, शरीर मन बुद्धि का। तादात्म्य किसके साथ में है, शरीर मन बुद्धि के साथ में, तो वो परधर्म हो गया। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो रिजल्ट जो है इसका काफी भयानक होगा। लोग कर्म करते हैं, कुर्वन्ते कर्म भोगाय, लोग भोग के लिए कर्म करते हैं। और कर्म योग किसके लिए है, भगवान की खुशी के लिए है। और लोग सब कर्म करते हैं भोग के लिए। सुखाय कर्माणि करोति लोके न ते सुखम बान्यत उपारम्भा। लोग जो है कर्म करते हैं सुख के लिए, पर अल्टीमेटली देखा गया है कि कर्म जो है सुख नहीं देता है, दुख देता है, बांध देता है हमको। हम लोग को पता नहीं लगता है कि हम बंधे हुए हैं सब, मगर कर्म हमको बांधता है। तो कर्म को समझना जो है सहज काम नहीं है, कर्म को समझना सहज काम नहीं है, मगर इसका फल भयानक होता है। तो अपनी स्वरूप के अंदर हमको स्थिति करनी है। स्वरूप में स्थिति करने के लिए क्या करना होगा कि हमको अपने कर्म, अपनी भावनाएं, अपनी संवेदनाएं, इन सबको डिविनाइज करना है। सबको डिविनाइज करना है। डिविनाइज करना है मतलब क्या है, सब भगवान के लिए करना है। सबके अंदर भगवान का चिंतन होना चाहिए। इससे अगर क्या होगा, ऐसे अगर हम करेंगे तो हमारा परधर्म छूट जाएगा, सर्वधर्म चालू रहेगा। देखो हमारा अल्टीमेट पर्पज क्या है, हम लोग का अल्टीमेट पर्पज ये है कि हमारा जीव भाव चला जाए, हमारा अहंकार खत्म हो जाए, ईगो खत्म हो जाए, यही हमारा पर्पज है लाइफ का। हमको जीव भाव को खत्म करना है। जैसे ही जीव भाव खत्म हुआ, हम जो है अहम के अंदर आ जाएंगे। जीव भाव क्या है, शुद्ध अहम है, उसके ऊपर क्या है, अहम वृत्ति है, उस अहम वृत्ति के ऊपर क्या है, इदम वृत्ति है। तो इदम वृत्ति तो हमको समझ में आ जाता है, तो हट जाते हैं हम आराम से। अब दो चीजें रह गई, एक शुद्ध अहम और एक अहम वृत्ति। ये अहम वृत्ति जो है वो जीव भाव है, तो इस जीव भाव को हटाना है। तो जीव भाव हटेगा कैसे, अहम इनाशी भाज्याम अहम अमतया स्फुरति हरित स्वयं परम पूर्ण सत। हम अगर जिसको अहंकार को अगर हटा दें तब हमको वो शुद्ध अहम मिल जाएगा, शुद्ध अहम मिल जाएगा। तो पर धर्म क्या है आध्यात्मिक दृष्टि से, हाँ अहंकार की सेवा करना परधर्म है, हमको अहंकार का नाश करना है। तो कैसे होगा? तो हमारे मित्रानंद जी स्वामी जी कहते हैं कि पहले अहंकार को जला दो, राख कर दो। राख कर दोगे तो फिर जो है वो जैसे हवा के अंदर में थोड़ी सी हवा आने से राख उड़ के चली जाती है, बोले वैसे ही वो चला जाएगा। तो हम लोग की ड्यूटी क्या है? हमारी सबसे पहली ड्यूटी ये बनती है कि अपना स्वधर्म करें, अपना स्वधर्म करें। जैसे मान लो आपको एक फ्लाइट पकड़नी हो, आप जा रहे हो एयरपोर्ट ओ'हेयर, उसके बाद में आप, हमको सब रास्ते तो पता नहीं है, आपको मिशन से पता है। तो मिशन से हम निकले एयरपोर्ट से, फिर 60 पकड़ लिया, अब हमको 60 पकड़ के आगे जाके एयरपोर्ट जाना है। अब 60 के ऊपर में स्टारबक्स आ गया, अब राग द्वेष भीतर बैठा हुआ है, हैं? अब उस ट्रेन में मेरा स्वधर्म क्या बनता है? एयरपोर्ट जाओ। अगर हम अपने राग द्वेष के हिसाब से बोले ये स्टारबक्स आ गया है, रुको भाई नहीं, स्वधर्म अपना करो, अपने राग द्वेष के हिसाब से नहीं चलो। आप एयरपोर्ट पहुंच जाओ, आपको एयरपोर्ट पे वहां भी स्टारबक्स मिलेगा, तो आप चिंतित ना हो थोड़ा सा सबर करो। अब भगवान कहते हैं, अर्जुन मानो एक प्रश्न पूछ रहा है कि क्या ऐसी चीज है जो हमको इस प्रॉब्लम में डालती है, समाज में ये एक प्रॉब्लम बन गया है कि परधर्म लोग करते हैं। परधर्म मतलब पाप, स्वधर्म ना करके अगर कोई परधर्म करे इसका मतलब क्या है? वो पाप है। तो यहां पर अर्जुन ये प्रश्न करता है, यहां पर उसके पहले, प्रश्न के पहले शंकराचार्य जी लिखते हैं, यद्यपि ध्याय तो विषयान पुंस राग देशोस्य परिपंथनो इत्यादि प्रकरणों से अनर्थ का मूल कारण बतला गया है। अनर्थ का मूल कारण क्या है? तो विषयों का ध्यान करने से आस्ते आस्ते आदमी गिर जाता है। राग द्वेष को बताया गया है, राग द्वेष आपको पाप कर्म करवा देते हैं, लाइक्स एंड डिसलाइक्स। लोगों को मालूम नहीं है, जैसे ही उठे वहां चेक करना है, लोग कर बैठते हैं। पर वह भिन्न भिन्न प्रकरणों और अनिश्चित रूप से कहा गया है, इसलिए वह अनर्थों का कारण ठीक यही है ऐसा नहीं मालूम है। भगवान ने आगे बताया है कि अनर्थ क्यों होता है, क्यों हम ऐसा गलती काम कर बैठते हैं, विषयों के बारे में चिंतन करते करते बस वो विषयों के पीछे भागना शुरू कर देते हैं, राग द्वेष के कारण गलत करते हैं। मगर अर्जुन जानना चाहता है कि मेरे को ठीक से बताओ कौन सा कारण है जिसके कारण हम गलत काम कर देते हैं। अगर हमको ठीक ठीक पता लग जाए तो फिर उसको हम
चेक कर सकते हैं,
उसको हम सही कर सकते हैं, उसको सुलझा सकते हैं। इस विचार से उससे जानने की इच्छा करते हुए अर्जुन बोले, तो अर्जुन क्या बोलते हैं?
अर्जुन युवाच,
अर्जुन युवाच,
अथ केन प्रयुक्तोयम्,
अथ केन प्रयुक्तोयम्,
पापं चरति पुरुषः,
पापं चरति पुरुषः,
अनिच्छन्नपि वाष्णेय,
अनिच्छन्नपि वाष्णेय,
बलादिव नियोजितः,
बलादिव नियोजितः,
अथ केन प्रयुक्तोयम्, पापं चरति पुरुषः, अनिच्छन्नपि वाष्णेय, बलादिव नियोजितः,
अथ केन प्रयुक्तोयम्, पापं चरित पुरुषः, किस प्रधान कारण से युक्त हुआ मनुष्य जो है पाप कर्म कर देता है? कौन सा प्रधान कारण है? कारण आपने आगे बताए हैं हमको कि विषयों का चिंतन करते हुए कि राग द्वेष के कारण से करता है। मगर हमको अर्जुन पूछना चाहता है, मेरे को प्रधान कारण बताओ, क्या कारण है, एक कारण बताओ ठीक से, ताकि उसको मैं ठीक कर पाऊं। अच्छा, वो क्या करता है? अनिच्छन्न भी वार्ष्णेय, वार्ष्णेय मतलब विष्णु कुल में पैदा होने वाले भगवान कृष्ण का नाम वार्ष्णेय है। अनिच्छन्न भी, मैं नहीं करना चाहता हूं गलत काम। मगर बलादिव नियोजित है, कोई मान लो होता बलपूर्वक हमसे करवा देता है, कौन है वो, मेरे को वो जानना है। अच्छा, प्रश्न देखकर लगता है कि भगवान ने तो इसका उत्तर आगे दे दिया है। आगे उत्तर कहाँ है? प्रकृति में यांति भूतानी निग्रह की करिष्यति। आपकी प्रकृति है जो जोर से आपसे काम करवा देती है, जोर से काम करवा देती। मगर वहां पर पाप वर्ड नहीं आया, पाप वर्ड नहीं आया, वहां पर पाप का चिंतन नहीं हुआ है। देखो, भगवान ने कहा हमने नहीं माना ये पाप नहीं है, मेरा बच्चा, मेरे बच्चे को स्कूल जाना चाहिए, वो स्कूल नहीं गया, उसने कोई अधर्म नहीं किया, उसको आप पाप नहीं कह सकते हो। मगर यहां पर प्रश्न है कि ये पाप कौन करवाता है? ये पाप कर्म जो है वो बड़ा डेंजरस है। देखो, बहुत लोग हैं, दुर्योधन का एक जो है फेमस वर्स है, जानापि धर्मम न चाहिए प्रवृत्तिम, मैं धर्म क्या है वो जानता हूं मगर मैं करना नहीं चाहता, नहीं करूंगा। जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, मैं अधर्म जानता हूं मगर मैं छोड़ नहीं सकता। अच्छा, केनापि देवे न हृदय स्थिते न, लगता है कोई देवता भीतर बैठा हुआ है। यथा नियोक्तोस्मि तथा करोमि, वो जैसा कहता मैं करता जा रहा हूं। ये दुर्योधन कहता है कि भीतर में जैसे कोई आदमी बैठा हुआ, कोई देवता बैठा हुआ है, मेरे को धर्म और अधर्म दोनों पता है, धर्म मैं करना नहीं चाहता, अधर्म मैं छोड़ना नहीं चाहता, क्यों? बोला भीतर कोई आदमी बैठा हुआ है। यहां पर भी ऐसा ही है, अनिच्छिन्नपि, मैं नहीं करना चाहता हूं फिर भी कोई मेरे से जोर से करवा देता है। ऐसा ही प्रश्न जो है केनोपनिषद में भी आता है, केने सितम पतितम प्रेषितम, मन किसके कारण जो है मन जो है चलना शुरू करता है, ये इंद्रियां काम करना शुरू करती हैं। तो यहां पर कौन ऐसा चीज है जो हमसे पाप कर्म करवाता है? अब यहां पर पाप की बात अगर शुरू हो रही है तो हमको जानना होगा पाप क्या है। पाप क्या है, उसको जानने के पहले पहले आपको जानना होगा पुण्य क्या है, तब पाप ठीक से समझ में आएगा। पुनाति इति पुण्य, ये उसकी परिभाषा है, पुनाति इति पुण्य, जो प्योरीफाई करे उसको पुण्य कहते हैं। तो पाप की परिभाषा क्या होगी? जो प्योरीफाई ना करे वो पाप है। अब बताओ कर्म योग क्या है, साकाम कर्म क्या है? ये आपको क्लियरली जान लेना होगा, साकाम कर्म करते हो पाप हो रहा है, पाप हो रहा है मतलब वासना बढ़ती जा रही है। वासना बढ़ने का मतलब मन मैला होता जा रहा है, कर्म योग करने से मल मन साफ होता जाएगा। पाप की दूसरी परिभाषा, पाती थी पाप, जो रक्षा करे वह पाप है। किसकी रक्षा? बोलो अज्ञान की रक्षा करता है, जो अज्ञान की रक्षा करता है वो पाप है। देखो हम सब अज्ञान की रक्षा करते हैं, हमारा अज्ञान बना रहता है ना। अज्ञान क्या है? अपने स्वरूप को नहीं जानना अज्ञान है, उसको बनाए रखना पाप है। तो हम अपनी अविद्या को संभाल के रखे हुए हैं। अब हम बोलेंगे तो आप बोलेंगे आप बहुत साफ बोल देते हो, ऐसा बोलना नहीं चाहिए आपको। आप सत्संग में नहीं आते हो तो क्या करते हो? सत्संग में आओगे तो क्या होगा, मन साफ होगा कि नहीं होगा? हम साफ कह देते हैं, फिर हमको अब लोग आके कहते हैं आप ऐसा क्यों कह देते हो। हमने एक जगह कह दिया कि भाई जो रविवार को सवेर की क्लास में नहीं आते हैं वो लोग सोए रहते हैं, वो लोग तामसिक हैं। हमारे पास दूसरे दिन बहुत से लोग आ गए, आपने हमको तामसिक कैसे कह दिया?
शास्त्र में बोलते इसमें कि तामसिक है,
लोग कह देते हैं ऐसा आके। तब बोला नहीं भाई गलती हो गई, माफ कर दो, ये तो शास्त्र कहते हैं, मैं क्या कहूं। अब देखो आप लोगों ने भी सीधा सीधा बता दिया ना, फटाफट बता दिया, विज्ञान पता होने से ही आप लोग भी बता पाएंगे। तीसरी डेफिनेशन क्या है? जो कर्म वृत्ति संवेदना हमारे स्वरूप की तरफ ले जाए वो पुण्य है, और जो कर्म वृत्ति और संवेदना हमको हमारे स्वरूप से विपरीत ले जाए वो पाप है। संवेदना फीलिंग है। जो कर्म, जो संवेदना, फीलिंग्स, जो वृत्ति, जो थॉट्स हमको भगवान की तरफ ले जाए वो है पुण्य। क्यों पुण्य? मेरा मन शुद्ध हो रहा है वहां। और उसके विपरीत अगर जगत की तरफ में अगर चले जाए कर्म, फीलिंग, वृत्ति, इमोशन, तो वो क्या हुआ? आप दया करके, बुद्धिमान लोग हैं आप लोग, आप क्या कर रहे हो बोलो, क्यों शर्मा क्यों रहे हो?
अभी तो पुण्य ही कर रहे हैं, क्लास में है।
अच्छा अच्छा, जो चौथा आपको हम बताते हैं डिफिनीशन पाप की, जो कर्म ताप दे, माइंड को एजिटेट करे, वो पाप है। जो कर्म माइंड को ताप दे, कर्म करने के पहले डर लगता है, कर्म करते हुए डर लगता है, कर्म फल आने पर डर लगता है, वो पाप कर्म है। पूजा करने के पहले मन अच्छा लगता है, करने की इच्छा होती है, पूजा के समय भी मन अच्छा होता है, पूजा के बाद जब उसका फल आता है वो भी अच्छा होता है। तो जो मन को एजिटेट करे वो पाप है। डेफिनेशन नंबर 5, आप याद रखना क्या कितनी डेफिनेशन बताते जा रहे हैं आपको। शास्त्र के अनुसार अगर आप कर्म करते हो तो वो पुण्य है, और शास्त्र के विरुद्ध अगर कर्म करते हो तो कर्म योग करना
पुण्य,
कर्म योग नहीं करना। आप लोग तो विद्वान हो गए हो। देखो हमारे शास्त्र में बहुत स्थूल रूप से बताया गया है कि ऐसा करो, नहीं करो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, मदिरा मत पियो, मगर आस्ते 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 फिर वो सूक्ष्म होता जाएगा। स्थूल तौर पर जो है शास्त्र बताते हैं, झूठ नहीं बोलना, हिंसा नहीं करना, पशु को नहीं मारना, ऐसा शास्त्र कहते हैं, मगर आस्ते 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 वो परिभाषा सूक्ष्म होती जाएगी। सूक्ष्म होती जाएगी मतलब आपको जो है लगेगा, देखो ये 5-6 डिफिनेशन जो आपको बताई हैं ये आस्ते 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 सब सूक्ष्म हो जाती हैं। देखो हम देवता और असुर ये दोनों ही हैं, और हम देवता की प्रशंसा करते हैं, देवता बनना भी चाहते हैं, मगर हाईएस्ट स्टैंड पॉइंट से देवता बनना भी पाप है। क्यों? बहुत मुश्किल करके आपने 100 राजसुई यज्ञ करके इंद्र का पोस्ट पा लिया, देवताओं के राजा, उसके बाद दूसरे किसी व्यक्ति ने उतना कर दिया, फिर क्या हुआ? मेरी सीट। अब बताओ देवता बनना पुण्य है कि पाप है? स्वर्ग जाना क्या है? मैं बहुत ऊंचे स्तर से बात कर रहा हूं, बहुत ऊंचे स्तर से बता रहा हूं आपको कि स्वर्ग में जाना भी पाप है। क्यों?
मुक्ति पानी है ना।
और बताएं, हाईएस्ट पॉइंट से पुण्य भी पाप है। क्यों? पुण्य के लिए भी शरीर लेना होगा।
टू एग्जॉस्टेड
बाइंड्स। पुण्य के लिए भी आपको शरीर लेना पड़ेगा। इन सब के ऊपर विचार करो आप। आप सत्संग में आते हो, सत्संग में आके आप संसार की चिंतन करते हो, सत्संग में बैठे हो, फिजिकली यू आर प्रेजेंट देयर, मेंटली पता पुण्य की पाप है बोलो पाप है। सत्संग में आए आप सो गए, पुण्य की पाप है। यहां यहां से दिखाई पड़ता है। वो लोग सोचते हैं हमको नहीं दिखाई पड़ता है, हमको यहां से सब दिखाई पड़ता है। भगवान ने कहा है, नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्र मिह विद्यते। ज्ञान से पवित्र कोई चीज नहीं है, ज्ञान ही आपको सबसे ज्यादा पवित्र करता है। देखो तो हम लोग इतना डिस्कशन क्यों कर रहे हैं, ताकि हम लोग सजग हो जाएं। इतनी परिभाषाएं और इतनी चीजें एग्जाम्पल देने का मतलब यही है कि हम थोड़े से सजग हो जाएं।
सजग में सजग में सैलेट
एक्स्ट्रा।
अच्छा, कर्म के स्तर पर अच्छे कर्म करना पुण्य है। कर्म के स्तर पर लोअर लेवल पर कोई आदमी बहुत पाप कर्म करता हो तो हम लोग क्या करते हैं, अच्छा तुम थोड़ा सा सेवा कर लिया करो, थोड़ा सा मंदिर जाया करो, थोड़ा सा संग जाया करो, थोड़ा दान किया करो, थोड़ा सा पुण्य करो। कर्म के स्तर पर जो है हम कर्म पुण्य कर्म कर सकते हैं, मगर शरीर से अगर आपने तादात्म्य किया तो पाप हो जाएगा। आगे भी हमने देखा है हमारा आध्यात्मिक दृष्टि से हमारा स्वधर्म क्या है,
सच्चिदानंद।
अगर हम BMI से तादात्म्य करते हैं तो क्या है वो, ऊपर धर्म हो गया। किससे तादात्म्य करना था, सच्चिदानंद से। किससे तादात्म्य किया हमने, तादात्म्य मीन्स आइडेंटिफिकेशन। किससे अटैच्ड है, तो ये पाप है कि पुण्य है, पर धर्म हो गया। हमारा धर्म क्या है, सच्चिदानंद से जुड़ना हमारा धर्म है। उससे तो नहीं जुड़े, किससे जुड़ गए, शरीर मन बुद्धि से जुड़ गए। क्या हुआ वो, आ रहा ना समझ में, आ रहा ना, तो सहज है। तो देखो संत अपने आप को पापी कहता है, वो कहता है मौसम खल क्या है, मौसम खल ना ही कोई, मेरे जैसा पापी कोई नहीं है। क्यों कहता है, अगर उसका एक विचार भी अगर गलत आ गया ना तो कहता है मैं कितना बड़ा पाप कर दिया। हमारे तो सारे विचार गलत हैं। संत कहता है कि मेरे जैसा पापी कोई नहीं,
पापी
क्यों, कि मेरा एक विचार गलत आ गया, उसके लिए वो छटपट करता है। मगर हाईएस्ट पाप क्या है, हाईएस्ट पाप है अज्ञान। सब पापों की जड़ जो है अज्ञान है, इसलिए हाईएस्ट पाप जो है वो अज्ञान है। एक और आपको परिभाषा बताते हैं पाप की। अगर आप जो है छोटी मोटी चीज के लिए कॉम्प्रोमाइज कर लो ना, वो भी पाप है। छोटी मोटी पॉल्ट्री चीज के लिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लिया, बोले वो भी पाप है। तो अर्जुन का प्रश्न है कि मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूं, मैं क्यों नहीं अपना स्वरूप देख पा रहा हूं, कौन पाप करने के लिए प्रेरित कर रहा है। अनिच्छन्नपि, मेरी इच्छा नहीं है, मेरे को मालूम है मैं गलत काम कर रहा हूं, मैं फिर भी कोई जोर से मेरे से करवा लेता है। बलादिव नियोजित है, हे विष्णु कुल में उत्पन्न हुए कृष्ण, किस प्रधान कारण से प्रयुक्त किया हुआ यह पुरुष स्वयं न चाहता हुआ भी, मेरी इच्छा नहीं है, हम नहीं चाहते हैं करना, राजा से प्रयुक्त किए हुए सेवक की तरह बलपूर्वक लगाया हुआ सा पाप कर्म का आचरण किया करता है। बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया है, राजा का सेवक, राजा का सेवक, राजा का सर्वेंट, जो बोलेगा करना होगा, राजा जो बोलेगा तो उसको तो करना होगा, उसकी वहां पर राग द्वेष इच्छा कुछ नहीं है। देखो हम लोग सब भी तो कंपनी में काम करते हैं, वहां हमारा राग द्वेष है, लाइक्स डिसलाइक्स है। नेक्स्ट सैटरडे अगर मान लो हमारे बच्चे का बर्थडे और बॉस बोल दे फ्राइडे नाइट को जाना आपको न्यूयॉर्क, जाओ, कहोगे कुछ कर पाओगे? नहीं, जाना पड़ेगा। तो सेवक की तरह, जैसे मान लो होता है कि हम जो है एक सेवक हो गए और राजा कोई भीतर बैठा, कौन राजा है? वो भीतर बैठा हुआ है जो हमको प्रेरित करता है गलत काम करने के लिए, और हम सेवक की तरह करते हैं। अर्जुन का प्रश्न है कौन सा वैसा वो कारण है, मुख्य कारण है, जिसके कारण मेरे से ऐसा गलत काम पाप कर्म हो जाता है। अनिच्छन भी, मैं इच्छा नहीं करता हूं, फिर भी कोई जबरदस्ती मेरे से करवा लेता है, मेरे को ये बताओ क्या है। तो भगवान उसका उत्तर देंगे। देने के पहले शंकराचार्य जी कुछ और कहेंगे कि भगवान कौन है, भगवान किसको कहते हैं, भगवान के पास में क्या क्या चीजें होती हैं। जैसे धनवान होता है, गुणवान होता है, वैसे ही भगवान होता है। तो भगवान के पास में 6 भग होते हैं, 6 क्वालिटीज होती हैं, इमेंस मेजर के अंदर होती हैं, इसलिए उनका नाम है भगवान। जैसे धनवान है, गुणवान है,
बलवान, शक्तिवान,
बलवान, शक्तिवान।
भग मतलब गुण।
कौन कौन से गुण है शंकराचार्य जी बताएंगे। भगवान की 2 डिफिनीशंस हैं, वो हम लोग अगले सत्र में लेंगे। भगवान किसको कहते हैं पता आपको?
अगले सत्र पता चल जाएगा नेक्स्ट।
पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।